नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने संघर्षरत क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने केरलम के पालक्काड में एक चुनावी जनसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख राजनीतिक दलों वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ की आलोचना करते हुए उन पर राज्य को भ्रष्टाचार के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल एनडीए गठबंधन ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। बाद में प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले में रोड शो किया। पश्चिम बंगाल में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्यभर के 170 पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को हटा दिया है। इनमें भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विभाग की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 11 उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित कुल 184 पुलिस अधिकारियों के तबादलों और तैनाती को मंजूरी दी है। ये फेरबदल उत्तर से दक्षिण बंगाल तक पूरे राज्य में किया गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इस व्यापक तैनाती का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया के दौरान सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखना और पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य दिवालियापन और ऋण संहिता 2016 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। सदन में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा और उसे पारित करने का भी कार्यक्रम है। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को विनियमित करना है। सरकार ने कल गजट अधिसूचना जारी कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी। ये कदम सरकार ने भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से उठाया है। अधिसूचना के अनुसार प्रति जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले अधिकतम 2 ईंधन स्टेशन 5000 लीटर तक केरोसिन का भंडारण कर सकते हैं। ये अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 60 दिनों तक या अगले आदेश तक वैध रहेगी। ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबाफ ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखने के बावजूद अमरीका पर गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की योजना बनाने का आरोप लगाया है। श्री बगेर ने कहा कि अमरीकी सैनिकों के देश में प्रवेश करने पर ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उधर अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने बताया कि 3500 नौ सैनिकों और मरीन सैनिकों को ले जा रहा अमरीकी जहाज त्रिपोली पश्चिम एशिया पहुंच गया है। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में अमरीकी केंद्रीय कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इसराइल में लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और ईरान के साथ चल रहे संघर्ष तथा ईरान के हथियार उत्पादन पर अंकुश लगाने के प्रयासों पर चर्चा की। अफगानिस्तान ने कुनार प्रांत के असदाबाद के बाहरी इलाकों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी का आरोप लगाया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।